लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
उधर चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और NDRF की मदद से राहत और बचाव कार्य जारी है। रसिन डैम का जलस्तर स्थिर रखने के लिए पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण बाढ़ गंगा नदी के डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने जनपद वासियों को बाढ़ गंगा और बागेन नदी के किनारे, घाटों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। उधर वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच गई है। प्रशासन की ओर से गंगा और वरुड़ा के तटवर्ती क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। वरुड़ा के जल भरवाव से प्रभावित कुछ परिवारों को पहले ही राहत शिविरों में रखा गया है। संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए NDRF, जल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समेत संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है। पीलीभीत में भारी बारिश और बनबसा बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। ट्रांस शारदा क्षेत्र में फसलें और संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। उधर देवहा नदी की बाढ़ से कई गांवों के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए चित्रकूट और पीलीभीत में कक्षा 8 तक के स्कूलों में कल अवकाश घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की 7.8% आर्थिक वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद से जारी युद्ध और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया।
देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया। देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के आर्थिक वृद्धि को 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प को दर्शाने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णायक नीतियों ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत देश की संकल्पना नहीं है, बल्कि ऐसे राष्ट्र के निर्माण का लक्ष्य है जो मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक में अग्रणी हो और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके।
विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमईज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजिक तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वह आत्मनिर्भर।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 UPPET के लिए पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दी है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। यह असुरक्षित स्थितियों को टालने के लिए आवश्यक होने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाता है, गंभीर परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और टक्कर के जोखिम को काफी कम करता है। यह पहल रेलवे सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। उधर देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
कौशाम्बी के मोहम्मदपुर गांव में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने आज सुबह एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 19 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर 4 घंटे में मुआवजा देने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के MSME अवार्ड समारोह में की शिरकत। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है MSME सेक्टर। रेलवे ने मुरादाबाद संभाग के 712 किलोमीटर मार्ग के लिए कवच योजना के तहत 170 करोड़ रुपए किए मंजूर। इस कदम से और सुरक्षित होगी रेल यात्रा। और चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर की 2000 क्विंटल। प्याज के दामों पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षित भंडार से राज्यों को की जा रही सप्लाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।